आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूंगी एक प्रेरक दस्तावेज पर गहराई से बात करने जा रहे हैं। यह है गायत्री परिवार के युग निर्माण मिशन का घोषणा पत्र, जिसका शीर्षक है हमारा युग निर्माण सत्संकल्प
जी।
और इसे पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तैयार किया था। पर यह सिर्फ एक पुस्तक का हिस्सा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसे तो एक पूरी जीवन शैली का खाका, एक तरह का ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है।
बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा का जो मकसद है वो सिर्फ इसका सार बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज के दौर में जब बहुत से लोग बदलाव तो चाहते हैं पर खुद को थोड़ा असहाय महसूस करते हैं, तब ये सत्संकल्प एक प्रैक्टिकल टूल कैसे बन सकता है।
और इसकी बुनियाद ही एक बहुत शक्तिशाली विचार पर टिकी है ना, कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत एक मजबूत इरादे से होती है,
एक संकल्प से होती है।
और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सत्संकल्प कहता है कि ये जो विशाल ब्रह्मांड है,
हाँ,
ये भी परमात्मा के एक ही संकल्प, एको अहम बहुस्याम का नतीजा है।
यानी मैं एक हूं बहुत हो जाऊं,
ये सोचने में ही कितना गहरा है। तो क्या क्या इसका मतलब ये है कि वही रचनात्मक शक्ति जिसने एक विचार से पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे दिया, वो हमारे अंदर भी है?
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही तो इसका सबसे क्रांतिकारी विचार है।
अच्छा,
ये एक तरह से दिव्यता का लोकतंत्रीकरण करता है। मतलब ये कहता है कि ब्रह्मांड की जो क्रिएटिव पावर है वो कोई दूर की रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर ही है, संकल्प की शक्ति के रूप में।
तो फिर चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। हम सब संकल्प शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इस सत्संकल्प में इसकी परिभाषा क्या दी गई है?
ये बहुत जरूरी सवाल है।
ये एक आम इच्छा से कैसे अलग है?
देखिए, सत्संकल्प के अनुसार जब हमारी कोई इच्छा बुद्धि की कसौटी पर कसी जाती है,
अच्छा,
और फिर एक दृढ़ निश्चय में बदल जाती है, तब वो संकल्प बनती है।
मतलब ये सिर्फ एक सोच नहीं है?
नहीं, ये मन की पूरी ताकत और एकाग्रता का प्रतीक है।
इसे शायद ऐसे समझ सकते हैं कि काश मैं ज्यादा सेहतमंद होती, ये कहना एक इच्छा है।
हाँ, एक आकांक्षा है।
लेकिन ये कहना कि आज से मैं रोज सुबह 30 मिनट टहलने जा रही हूँ और मीठा खाना बंद कर रही हूँ, ये एक संकल्प है।
एकदम सही उपमा है। एक निष्क्रिय सपना है, दूसरा एक सक्रिय प्रतिबद्धता। और पूज्य गुरुदेव इस विचार को सिर्फ आध्यात्म तक नहीं रखते, वो कहते हैं कि आज दुनिया में जो भी तरक्की है, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, उद्योग हो,
हाँ,
उसके मूल में इंसान का संकल्प ही तो है। और वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं,
क्या,
कि अगर बुरे संकल्पों के लिए इतने साधन जुट सकते हैं तो अच्छे संकल्पों यानी सत्संकल्पों की शक्ति तो असीम होगी।
सही बात है। ठीक है, संकल्प की शक्ति तो समझ में आती है, पर इसे घोषणा पत्र के रूप में लिखने की जरूरत क्यों पड़ी?
क्योंकि बिना दिशा के शक्ति बिखर जाती है।
अच्छा,
सत्संकल्प मानता है कि आज समाज में अशांति इसलिए है क्योंकि हर कोई बदलाव तो चाहता है, पर किसी के पास कोई स्पष्ट नक्शा नहीं है, कोई रोडमैप नहीं है।
तो ये सत्संकल्प वो रोडमैप है?
हाँ, ये सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक सुनिश्चित दिशा और एक संगठित कदम है। ये उस बिखरी हुई आकांक्षा को एक जगह इकट्ठा करके उसे एक स्पष्ट रास्ता दिखाता है।
और इसकी सबसे खास बात शायद ये है कि ये दूसरों को उपदेश देने के बजाय सारा ध्यान आत्मनिर्माण पर रखता है।
बिल्कुल।
हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या क्या ये एक व्यक्ति पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ नहीं डाल देता? सिस्टम को या नेताओं को दोष देना तो ज्यादा आसान है।
यही तो इस दर्शन का मूल बिंदु है, यही तो क्रांति है। ये जिम्मेदारी से भागने की बजाय उसे अपनाने की बात करता है। ये कहता है कि सिस्टम कोई बाहर की चीज नहीं है, सिस्टम हम ही है। बदलाव की शुरुआत सबसे छोटी लेकिन सबसे शक्तिशाली इकाई से होनी चाहिए, और वो है व्यक्ति।
जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है।
बिल्कुल, वैसे ही एक एक व्यक्ति के सुधरने से ही युग सुधरेगा।
तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के अंदर चलते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये हमारा मार्गदर्शन कैसे करता है, यहीं पर वो 18 सूत्र आते हैं।
जी,
हम एक एक करके उनकी सूची नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन्हें कुछ विषयों में बांट कर समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ, वो बेहतर रहेगा।
तो पहला विषय है व्यक्तिगत अनुशासन और चरित्र निर्माण।
ये नींव है। इसमें शरीर को मंदिर समझकर उसकी देखभाल करना,
आरोग्य की रक्षा,
हाँ, और मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए स्वाध्याय करना, और चार तरह के संयम पर जोर दिया गया है।
चार तरह के?
इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम।
मुझे यहाँ पे रुकना होगा। समय संयम।
हाँ,
आज के डिजिटल युग में जहाँ हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों चीजें हैं, ये एक सूत्र ही अपने आप में जिंदगी भर की चुनौती जैसा लगता है।
बिल्कुल, और इसीलिए ये एक अभ्यास है, कोई एक दिन का काम नहीं। इन सूत्रों का मकसद हमें दोषी महसूस कराना नहीं है,
तो फिर?
बल्कि जागरूक बनाना है। और इसी जागरूकता से जुड़ा एक और सूत्र है जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है।
आप सूत्र 9 की बात कर रहे हैं?
जी।
अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधारी करेंगे। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन आज की इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में क्या ये वाकई व्यवहारिक है?
ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, यहाँ बहुत असफलता को ढूंढने की नहीं है,
तो फिर
बात है सफलता की परिभाषा को ही बदलने की।
अच्छा।
सत्संकल्प ये तर्क देता है कि जो कामयाबी गलत रास्ते पर चलकर मिलती है वो असल में कामयाबी है ही नहीं। वो एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कर्ज है। असली जीत अपनी ईमानदारी और उसूलों को बचाए रखने में है।
और यही बात शायद सूत्र 10 से भी जुड़ती है, जो कहते हैं कि इंसान का मूल्यांकन उसकी दौलत या पद से नहीं बल्कि
उसके अच्छे विचारों और कर्मों से होना चाहिए।
तो ये व्यक्तिगत नींव की बात हुई, इसके बाद ये दर्शन समाज की ओर कैसे बढ़ता है?
अगला विषय सामाजिक जिम्मेदारी और व्यवहार का ही है। इसका मूल विचार ये है कि जब व्यक्ति की अपनी नींव मजबूत हो जाती है तो वो खुद को समाज का एक जरूरी हिस्सा समझने लगता है। वो मर्यादाओं का पालन करता है, अपने नागरिक कर्तव्यों को निभाता है और सिर्फ अपने फायदे से ऊपर उठकर सबके हित में सोचता है।
इसी में सूत्र 11 भी आता है जो मुझे बहुत पसंद है, दूसरों के साथ वो व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं।
सुनहरा नियम, द गोल्डन रूल।
हाँ, ये तो लगभग हर संस्कृति और धर्म में मिलता है, तो फिर इसे यहाँ इतने स्पष्ट रूप से शामिल करने की क्या खास वजह थी?
क्योंकि किसी सिद्धांत को जानना एक बात है और उसे सक्रिय रूप से अपने व्यवहार में उतारना बिल्कुल दूसरा।
अच्छा।
ये सूत्र सिर्फ एक ज्ञान की बात नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में सहानुभूति का अभ्यास करने का एक सीधा निर्देश है। ये हमें याद दिलाता है कि करुणा कोई निष्क्रिय भावना नहीं बल्कि एक सक्रिय चुनाव है।
और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सूत्र 16 राष्ट्रीय एकता की बात करता है, जाति, लिंग, भाषा या प्रांत के आधार पर कोई भेदभाव न करना।
बिल्कुल
ठीक है, तो पहले खुद को संभालो, फिर समाज में अपनी भूमिका निभाओ। और तीसरा और अंतिम विषय क्या है?
तीसरा विषय है सक्रिय योगदान और प्रगतिशील सोच।
इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब ये सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने से आगे जाकर बदलाव का एक सक्रिय एजेंट बनने की बात करता है।
जैसे?
जैसे सूत्र 13 कहता है कि समाज में अच्छी आदतों को फैलाने के लिए अपना समय, प्रभाव, ज्ञान और धन का एक हिस्सा नियमित रूप से लगाओ।
और इसमें सूत्र 14 मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे।
हाँ, ये बहुत क्रांतिकारी है।
एक आध्यात्मिक स्रोत से आने वाला ये विचार, क्या इसका गलत मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि हम अपनी सारी परंपराओं को छोड़ दें?
ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब परंपराओं को आंख बंद करके खारिज करना बिल्कुल नहीं है।
तो फिर क्या है?
इसका उद्देश्य है आंख बंद करके अनुसरण करने से रोकना। ये हमें जागरूक निरंतरता के लिए प्रोत्साहित करता है।
जागरूक निरंतरता?
हाँ, यानी जो परंपराएं समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं, विवेकपूर्ण हैं, उन्हें बनाए रखें, और जो रूढ़ियां या कुरीतियां समाज के लिए हानिकारक बन गई हैं उन्हें सुधारें या छोड़ दें।
मतलब एक जीवंत और विकसित होती संस्कृति की बात है, किसी ठहरी हुई संस्कृति की नहीं।
बिल्कुल।
और ये सब सूत्र 17 और 18 में आकर अपने शिखर पर पहुंचता है, जो कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, और अगर हम बदलेंगे तो युग जरूर बदलेगा।
हाँ, ये पूरी तरह से कर्म और पुरुषार्थ का सिद्धांत है, किसी चमत्कार का इंतजार करने का नहीं।
ये एक अविश्वसनीय ढांचा है, लेकिन कोई भी ढांचा तब तक बेकार है जब तक वो सिर्फ पुस्तक में बंद रहे। कोई व्यक्ति इसे अपनी जिंदगी में असल में उतारे कैसे? इसका व्यवहारिक तरीका क्या है?
इसका सुझाया गया तरीका बहुत सरल लेकिन गहरा है। इसे रोज अपनी दैनिक उपासना या ध्यान से पहले पढ़ा जाना चाहिए।
सिर्फ पढ़ना है?
नहीं, सिर्फ रस्म की तरह नहीं बल्कि धीमी गति से हर शब्द के अर्थ को समझते हुए और उस पर विचार करते हुए।
और फिर हर दिन किसी एक सूत्र पर ध्यान केंद्रित करना।
हाँ, यही स्वाध्याय का असली मतलब है। किसी एक सूत्र को चुनिए और दिन भर उसे अपने मन में रखिए।
उसे अपनी दिनचर्या का चश्मा बना लीजिए।
बिल्कुल। देखिए कि आप कहाँ उस पर अमल कर पाए और कहाँ चूक गए। इसका मकसद खुद को आंकना नहीं बल्कि खुद को जानना है।
पर उन दिनों का क्या जब हम पूरी तरह से असफल हो जाते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं, समय बर्बाद करते हैं या स्वार्थी हो जाते हैं, क्या तब सब कुछ व्यर्थ हो जाता है?
बिल्कुल नहीं, बल्कि अभ्यास वहीं से असली बनता है। लक्ष्य पूर्णता नहीं है,
अच्छा,
बल्कि आत्मनिरीक्षण और सुधार की निरंतर प्रक्रिया है। इस अभ्यास के लिए चार चीजों की जरूरत बताई गई है, श्रद्धा, स्वाध्याय, चिंतन और अनुशासन।
श्रद्धा, स्वाध्याय, चिंतन और अनुशासन।
ये एक तरह से रोजाना का मानसिक और आध्यात्मिक व्यायाम है।
तो कुल मिलाकर ये सत्संकल्प सिर्फ एक नैतिक घोषणा पत्र नहीं है, ये व्यक्तिगत इंजीनियरिंग के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है,
जिसका अंतिम लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन है। और अंत में यह हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। सत्संकल्प कहता है, युग परिवर्तन के लिए जिस अवतार की आवश्यकता है, वो पहले आकांक्षा के रूप में ही अवतरित होगा।
आकांक्षा के रूप में,
हाँ। और आगे कहते हैं, इसी अवतार का सूक्ष्म स्वरूप ये युग निर्माण सत्संकल्प है।
एक मिनट, इसे थोड़ा और समझते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली बात है। क्या इसका मतलब ये है कि एक सामूहिक केंद्रित इरादा,
एक सत्संकल्प,
हाँ, एक सत्संकल्प, वो एक दिव्य अवतार जितनी शक्तिशाली शक्ति बन सकता है?
इसका सार यही है। कोई भी बड़ा परिवर्तन पहले समाज में एक तीव्र इच्छा या आकांक्षा के रूप में जन्म लेता है। जब लाखों लोग एक ही सकारात्मक बदलाव के लिए गहराई से सोचने और जीने लगते हैं, तो वो सामूहिक इच्छा ही परिवर्तन लाने वाली शक्ति बन जाती है।
और ये सत्संकल्प उसी सामूहिक इच्छा को जगाने और उसे एक दिशा देने का माध्यम है।
इसीलिए इसे उस आने वाले परिवर्तनकारी अवतार का सूक्ष्म यानी बीज रूप कहा गया है।
और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जो चीजों को ठीक करने के लिए हमेशा किसी नायक या किसी मसीहा का इंतजार करती है, क्या हो अगर वो उद्धारकर्ता कोई एक व्यक्ति न हो, बल्कि एक साझा, शक्तिशाली और अनुशासित विचार हो जिसे हम सब मिलकर जीने का फैसला करें? क्या एक सामूहिक संकल्प सच में वो अवतार हो सकता है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं?